वेद और शिवांशा अपने कमरे में बैठे हुए थे। जब से वेद की तबीयत खराब हुई थी, तब से सभी घरवाले वेद की तबीयत को लेकर कुछ ज्यादा ही केयरफुल हो गए थे। शिवांशा वेद का ख्याल खुद रखना चाहती थी और ऐसे में वेद उसका पूरा साथ दे रहा था। हालांकि वंश और आराध्या नर्स हायर करना चाहते थे ताकि शिवांशा का काम ना बढ़े, लेकिन वेद ने मना कर दिया। वेद यही चाहता था कि अब उन लोगों के मन में शिवांशा को लेकर किसी तरह का कोई शक ना रहे। उनके जाते ही वेद और शिवांशा बात कर रहे थे। वेद ने महसूस किया कि इस नई मिली जिम्मेदारी के चलते शिवांशा कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले रही थी। उसे मन ही मन ये डर सता रहा था कि अगर वेद की तबीयत और बिगड़ गई तो घर में सब उसे ही जिम्मेदार समझेंगे। शिवांशा से बात करते हुए वेद को इस बात का एहसास हुआ कि राजावत फैमिली में भी वो एक डर के माहौल में जीती थी और उसके घर में भी शिवांशा रिलैक्स होकर नहीं रह पा रही थी। अनजाने में ही सही, लेकिन उन सबके शक करने और वेद को देखकर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव होने की वजह से शिवांशा को वेद से जुड़ा कोई भी काम करने में डर लगता था। मुझे कुछ नहीं पता, बस आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मेरी सारी बातें मानिए। मुझे किसी को शिकायत करने का मौका नहीं देना और ना ये सुनना है कि मैं आपके लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई, शिवांशा बोले जा रही थी, जबकि वेद बिल्कुल शांत था। उसके कोई जवाब नहीं देने पर शिवांशा ने वेद के चेहरे की तरफ देखा, जो परेशान निगाहों से उसे देख रहा था। उसके चेहरे के बदले हुए भाव देखकर शिवांशा की भौहें सिकुड़ गई थी। उसने उलझन भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? यही कि मेरी लिटिल सी वाइफ के नाजुक से कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई ना, वेद ने हल्के लहजे में कहा, जिस पर शिवांशा उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। आपको ये सब मजाक लग रहा है, शिवांशा शिकायत लगाते हुए बोली। मजाक कहाँ लग रहा है, मैं बहुत सीरियस हूँ। अब मुझे खुद से ज्यादा तुम बीमार लग रही हो। चलो ऐसा करो, रेस्ट करो और मैं तुम्हारी केयर करूंगा, वेद बोला। उसकी बातें सुनकर शिवांशा की आंखें बड़ी हो गई थीं। वो जल्दी से ना में सिर हिलाने लगी, लेकिन वेद ने उसे जबरदस्ती लेटा दिया था। वेद शिवांशा के बगल में बैठा था। प्लीज मत कीजिए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, शिवांशा खुद में सिमटते हुए बोली, क्योंकि वेद उसके सर को हल्के हल्के दबा रहा था। वेद के हाथों में अभी भी हल्की गर्माहट थी, लेकिन सच में शिवांशा के सिर में दर्द था और वेद के ऐसा करने पर उसे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। शिवांशा ने उठना चाहा, लेकिन वेद ने उसे फिर से लिटा दिया था। वेद नहीं माना तो शिवांशा ने उसका हाथ पकड़कर दूर करना चाहा, तो वेद ने उसे आंखें दिखाई और लेटे रहने का इशारा किया। शिवांशा ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि उसकी आंखें बंद करते ही वेद के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। कुछ देर तक उनके बीच बिल्कुल खामोशी छाई रही। सुनो, उस खामोशी को तोड़ते हुए वेद ने शांत लहजे में कहा। शिवांशा ने तुरंत आंखें खोली तो वेद आगे बोला, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे पाया। मेरे घर वालों की वजह से तुम्हें काफी कुछ सहना पड़ा और शुरुआत में मैंने भी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। वेद के चेहरे पर पछतावे के भाव उभर आए थे। शिवांशा जल्दी से उठकर बैठी और उसने वेद के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, हाँ, शुरुआत में आपके घर में मेरा टाइम बहुत मुश्किल से बीतता था और उस पर आप भी मुसीबतें खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, लेकिन ये मत कहिए कि आप मुझे एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे पाए। मुझे इतना सिक्योर आज तक फील नहीं हुआ जितना आपके साथ रहने पर होता है। फिर चाहे आप पहले मुझसे नफरत भी क्यों ना करते हो, आप मेरे आसपास होते थे तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं लगता था। किसी का भी नहीं, वेद ने हल्के हैरानी भरे लहजे में पूछा। हाँ, किसी का भी नहीं सिवाय आपके, सबकी कमी तो आप पूरी कर देते थे, शिवांशा ने उसे छेड़ते हुए कहा। वेद ने उसका जवाब सुनकर आंखें घुमाई। वे दोनों काफी देर तक ऐसे ही बात करते रहे। फिर शाम को डिनर का वक्त हो जाने पर शिवांशा खाना लेने के लिए नीचे गई थी। इस दौरान वेद के पास मेहिका का कॉल आया। वेद ने देखा कि मैसेज भी काफी सारे आए हुए थे और वो जवाब नहीं दे पाया। उसने कॉल रिसीव किया और सॉरी कहते हुए बोला, तुमने मुझे मेरी हेल्थ अपडेट देने के लिए कहा था और मुझे मैसेज तक चेक करने का टाइम नहीं मिला। मैं ठीक हूँ, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो तुम सब लोग, वेद की आवाज में हल्की छुंचलाहट थी, जिसे सुनकर मेहिका ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है सब लोगों ने मिलकर कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया तुम्हें। और मुझे मत डांटो, तुम्हें नहीं पता लेकिन रात को जब अचानक से तुम रोड पर गाड़ी के बाहर खड़े थे, वो भी सर पकड़कर, तो तुम्हें उस तरह देखकर मैं कितना घबरा गई थी। वेद कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, थैंक्स मेहिका, इसकी जरूरत नहीं है वेद, और तुम मुझे पहले भी मैसेज करके बता देते तो मुझे घर नहीं आना पड़ता, मेहिका ने जवाब दिया। फिर उसे शिवांशा की याद आई तो वो तुरंत बोली, वैसे आज सुबह मैं शिवांशा से मिली थी और सच में वो बहुत प्यारी है, नो डाउट उसकी जैसी लड़की से किसी को भी प्यार हो सकता है, वेद ने जवाब में कुछ नहीं कहा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। इस बीच शिवांशा दरवाजे पर खड़ी वेद को घूर कर देख रही थी, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। वेद ने मेहिका का नाम सुन लिया था और ऊपर से वेद के होठों पर मुस्कुराहट भी थी। उसे नहीं पता था कि वेद के होठों पर ये मुस्कुराहट भी उसी का नाम सुनकर आई है। शिवांशा को बस इतना पता था कि वेद स्माइल करते हुए मेहिका से बात कर रहा था। इस बीच वेद का ध्यान शिवांशा की तरफ गया तो उसकी मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई। उसने जल्दी से मेहिका से कहा, अच्छा मेहिका, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मेहिका को बाय बोलकर वेद ने कॉल कट कर दिया था। शिवांशा खा जाने वाली निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। वो उसकी तरफ पढ़ते हुए बोली, डिस्टर्ब कर दिया होगा ना मैंने आप दोनों को, डोंट बिहेव लाइक अ किड। वेद ने आंखें घुमाकर जवाब दिया, अच्छा तो अब मैं आपको बच्ची लगने लगी। देखिए वेद, माना कि आप मुझसे कुछ बड़े हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्ची हूँ, शिवांशा ने वेद के सामने खाना रखते हुए हल्के गुस्से में कहा। मैंने कब कहा तुम बच्ची हो, मैंने बस ये कहा कि बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। उसने बस तबीयत का पूछने के लिए कॉल किया था, वेद ने उसे सफाई देते हुए कहा। और सुबह वो आपकी तबीयत का जानने के लिए घर तक आ गई थी, मुझे उन्हें देखकर बहुत अजीब सा लगता है, वो दिखने में खूबसूरत हैं और काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं, बिल्कुल आपकी तरह। ऊपर से मैंने देखा कि फैमिली में सब उसे पसंद करते हैं, यहाँ तक कि वंश भैया भी। कहीं आप, शिवांशा हिचकिचाते हुए अपनी इनसिक्योरिटीज वेद को बताई जा रही थी और उसकी आवाज़ हल्की भारी होने लगी। वो बोलते हुए बीच में रुक गई थी और उसे ये कहते हुए भी अजीब लग रहा था कि कल को वेद उसे छोड़कर मेहिका के पास न चला जाए। उसने अपनी बात को अधूरा छोड़ते हुए सिर हिलाकर कहा, छोड़िए आपको नहीं समझ आएगा। इतना कहकर शिवांशा मुड़कर जाने लगी, तभी वेद ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया था। वेद की हरकत काफी अचानक थी और उसकी इस छोटी सी मोमेंट पर ही शिवांशा का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसने वेद की पीठ पर हाथ रखा और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया था। शिवांशा की नजरें झुकी हुई थी, वेद की ठहरी हुई सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वेद ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए धीमी गहरी आवाज में कहा, मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिस पर तुम्हें मुझ पर यकीन होगा, तुम्हें तो ये तक नहीं पता मेहिका बोल क्या रही थी। खैर छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम्हारी ये इनसिक्योरिटी कैसे दूर होगी, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ।
वेद ने शिवांशा के सामने हार मानते हुए कहा। शिवांशा ने उसकी आंखों में देखा और उसकी बात को दोहराते हुए पूछा, सच में सब करने को तैयार हो? वेद ने उसकी आंखों के कोने में हल्की शरारत की झलक देखी तो उसने शिवांशा को घूर कर देखा और तुरंत अपनी गोद से उठाकर बेड पर बिठा दिया था। वेद का चेहरा दूसरी तरफ था और वो गहरी सांस ले रहा था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा जो जोरों से धड़क रहा था। उसने सिर झटका और तुरंत खुद को उस लम्हे से बाहर निकालकर शिवांशा की तरफ देखा। वेद के चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट थी और उसने काउच की तरफ इशारा करके कहा, आपकी जगह उधर है मैडम, मैंने क्या कहा था याद है ना? लेकिन आप हमारी शादी भी तो रजिस्टर नहीं करवा रहे हो, आप बहुत बुरे हो, शिवांशा ने मुंह बनाकर जवाब दिया। अच्छा मैं बुरा हूँ? मैंने भी तुमसे कुछ कहा था, क्या तुमने मेरी बात मानी? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है, अपने लिए कुछ अच्छा स्ट्रीम और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात को टाल दिया था, तो मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी मान लूंगा, वेद कंधे उचकाते हुए बोला। उसके इतना कहने के बावजूद भी शिवांशा के मुंह से एक बार ये नहीं निकला कि वो उसकी बात मानकर यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार है, उल्टा वो उससे मुंह फेर कर काउच पर बैठ गई थी। वहीं दूसरी तरफ लीला और देवेश के जाने के बाद न जाने क्यों अरमान को पहली बार अपने घर को लेकर अजीब महसूस हो रहा था। वो घर पुराना जरूर था पर उसने एक एक पैसा जोड़ कर लिया था और उसके लिए बहुत मायने भी रखता था। न जाने क्यों आज वो उसे घर पुराना और कम सुख सुविधाओं वाला लग रहा था। उसने नव्यांशी की तरफ देखा, वो खुद चौहान पैलेस में गया था और नव्यांशी को देखकर ही पता चलता था कि उसने अपनी लाइफ कितने कम्फर्टेबल तरीके से बिताई होगी, जबकि उसके घर में वो एक छोटे से कमरे में रह रही थी। अरमान ने नव्यांशी को अकेले में बात करने के लिए बुलाया और जैसे ही वे वर्क स्पेस में आए, अरमान ने नव्यांशी की तरफ देखकर सीधे सीधे कहा, नव्यांशी मैंने तुम्हारे लिए कुछ घर देखे थे, वो साउथ दिल्ली में है और वहाँ के लग्जूरियस अपार्टमेंट्स में से एक है, तुम कहो तो हम कल देखने चले। मैंने तुम्हें कह दिया अरमान मैं यहीं रहने वाली हूँ और फिर तुम मेरे लिए घर क्यों ढूंढ रहे हो, नव्यांशी ने नाराज होते हुए कहा। वो हैरानी भरी निगाहों से अरमान की तरफ देख रही थी। वो मैंने पहले रियलाइज नहीं किया, लेकिन बड़ी माँ सही कह रही थी, हमें यहाँ रहते हुए आदत हो गई है और तुम लोगों के हिसाब से ये घर कंफर्टेबल नहीं है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा घर देख दूंगा और अगर तुम्हें रोहन और मनन के साथ रहना है तो मैं फ्री होकर उन्हें तुम्हारे घर पर भी ले आऊंगा, अरमान ने सीधे लहजे में कहा। और तुम्हें किसने कहा कि ये घर कंफर्टेबल नहीं है और यहाँ मैं किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ? अरमान मुझे भी इस घर में रहने की आदत हो गई है और ये मुझे अपना सा लगता है, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, नव्यांशी ने जवाब दिया। अरमान की बातों से वो अच्छे से समझ गई थी कि ये सब लीला के भला बुरा कहने की वजह से हो रहा था। हालांकि नव्यांशी अरमान के सामने शांत थी लेकिन उसके हाथ की मुठ्ठियाँ बंधी हुई थी। लेकिन नव्यांशी, अरमान ने उसे समझाना चाहा, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही नव्यांशी जल्दी से उसके पास आई और अरमान के होठों पर अपनी उंगली रखकर बोली, जिस तरह तुम तुम्हारी बड़ी माँ के मुंह से इस घर के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते, वैसे मुझे भी तुम्हारे मुंह से इस घर के बारे में कुछ नहीं सुनना है, मैं कभी तुम्हें मिस्टर चौहान जितना कंफर्ट नहीं दे पाऊंगा, अचानक अरमान के मुंह से निकला। कोई बात नहीं, फिर मैं कोशिश करूंगी कि कम कम्फर्ट में अपनी लाइफ बिताने की आदत डाल लूं, या फिर हम दोनों मिलकर इतनी मेहनत करें कि साथ में कम्फर्टेबल घर तो ले ही सकें, नव्यांशी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हालांकि अरमान का मतलब सिर्फ घर से ही था, लेकिन नव्यांशी ने सीधे सीधे अपने इरादे बता दिए थे। अरमान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। वो कुछ कह पाता उससे पहले नव्यांशी मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगी। मेरा वो मतलब नहीं था, रुको नव्यांशी, बात अभी पूरी नहीं हुई है, अरमान ने पीछे से हड़बड़ाते हुए कहा। नव्यांशी उसकी तरफ पलटी और कंधे उचकाते हुए बोली, लेकिन मेरी तरफ से तो हो गई है, अरमान को देखकर आई विंक की और वहां से चली गई। जबकि अरमान अभी भी वहीं खड़ा हुआ था, उसे समझ तक नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। हालांकि न जाने क्यों उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी। डॉट डॉट डॉट। मैंने सोचा था थोड़ा छोटा पार्ट लिखूंगी और बाकी नॉवेल्स के पार्ट भी एडजस्ट हो जाएं, लेकिन लिखने बैठो तो पता ही नहीं चलता कि कब इतने सारे शब्द हो जाते हैं और कहानी वहीं सेम 2500 शब्द लिखने के बाद ही एक ठहराव पर आती है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं।